ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِهِ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، برادران اسلام اور عزیز طلبہ، آج کی ہماری یہ مجلس جامعہ خیر العلوم کا سالانہ اجلاس دستار بندی اور تقسیم اسناد کے مقصد سے منعقد کی گئی ہے۔ ایسی مجالس کا اصلی کام تو یہ ہوتا ہے لوگ مدرسے کی سال بھر کی کارگزاری سے آگاہ اور مطلع کیا جائے۔ لوگ آتے ہیں مدرسے میں، دیکھتے ہیں، خاص کر کے عوام، وہ جب درسگاہوں سے گزرتے ہیں تو اساتذہ کو طلبہ کے سامنے درس دیتے ہوئے تو وہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا پڑھایا جاتا ہے، کیسی تربیت ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، کون سے علوم ہیں جو یہاں نصاب میں داخل ہیں اور ان پر کس انداز سے محنت کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں وہ نہیں سمجھ پاتے۔ اسی طرح یہ سارا نظام جو مدرسے کا چل رہا ہے، وہ اس پر جو مصارف آ رہے ہیں، اللہ کے مخلص مخیر بندے اس میں جو تعاون اور امداد فرماتے ہیں اور ان کے اس تعاون اور امداد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نظام کو ان منتظمین کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ نے محترم صاحب کی رویداد میں سنی، آپ نے قراتیں سنی، تقریریں سنی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا شاکر صاحب زیر مجدہوں کے تبصرے کو بھی آپ نے سنا۔ میں نے خود ہی ان سے درخواست کی تھی، اگرچہ انعام سر نے تو ان کو مقید کر دیا تھا کہ مختصر الفاظ میں اپنے تاثرات کو پیش کریں، میں نے کہا صدر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اس اختصار کے پابند نہیں ہیں، اور اس میں میری اپنی غرض شامل حال تھی، میں اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اب زیادہ دیر تک بول نہیں پاتا ہوں۔ میں نے چاہا کہ اس طرح مدرسے کی خوبیاں یا ایسی کمزوریاں جن کی اصلاح ضروری ہے، اگر حضرت مولانا کی زبانی ان کی نشاندہی ہو جائے تو انشاءاللہ سننے والوں کو جامعہ سے متعلق حقائق کا علم ہوگا۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بہت اچھے انداز سے آ چکی ہیں، और साथ ही साथ इस साल फरागत करने वाले, हासिल करने वाले दो फारिगुत तहसील हमारे जो तालिबिल्म हैं उनकी दस्तारबंदी और उनको सनद से भी नवाजा गया, ये मंजर भी आपने अपनी आंखों से देख लिया। बहरहाल ये असल मकसद हुआ करता है इन इस किस्म की मजालिस के इनेकाद का। जो असल मकसद था बेहमदिल्ला बासन वजूह हासिल हो चुका है। ऐसे मौके पर मजलिस की निस्बत से दो चार बातें भी अर्ज की जाती हैं ताकि आने वाले दिन की कुछ बातों से आगाह भी हो जाएं। इस गर्द से अहकर को मुकल्लफ और पाबंद किया गया, लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया मैं पिछले कई दिनों से अपनी सेहत की वजह से ऐसी हालत में नहीं हूं कि कोई लंबा बयान दे सकूं। दरअसल तो मन दे लिया करता हूं, बयानात अब मेरे बस में कम होते जा रहे हैं, इसलिए मैं मुख्तसर वक्त में दो चार बातें अर्ज करूंगा अभी आपके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से मनकूल है, मैंने पढ़ा जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के रोज इंसान के कदम अपने रब के हुजूर से हट नहीं पाएंगे यहाँ तक के उससे पांच चीजों के मुतालिक सवाल होगा। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम और एहसान है कि वहां उस इम्तिहान गाह में, हशर की उस इम्तिहान गाह में क्या पूछा जाएगा, किन चीजों के मुतालिक तफ्तीश होगी, ये अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से पहले ही बतला दिया। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में तो आदमी जब इम्तिहान गाह में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद जब सवालात का पर्चा उसके हाथों में थमाया जाता है वो देखता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि क्या सवालात हैं, मुझे क्या जवाब देना है। लेकिन यहाँ अल्लाह तआला ने अपने करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें ये सारी बातें पहले ही बतला दी। तो इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सवालात में से पांच का तज़किरा किया है, तो मैदान हशर में इंसान से पूछे जाएंगे और भी बातें हैं जो पूछी जाएगी जिनका और अहादीस में और कुरान पाक की बाद आयात में जिक्र मौजूद है। इस हदीस में पांच का तज़किरा है। पहली बात जो पूछी जाएगी, अनोगी ही फीमा अपना हो, उसकी जिंदगी के मुतालिक सवाल होगा कि तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ खत्म किया, फना किया, इन कामों में इस्तेमाल किया। वाकया यह है कि ये जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है, ये अल्लाह की तमाम नेमतें जो हमें दी गई हैं उनका सर चश्मा है। अगर हमें जिंदगी ही न मिलती तो वो बाद में जिन नेमतों से हमको अल्लाह की तरफ से सरफराजा गया है उन नेमतों का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। ये मौजू भी खास आई हजरात उलमा के दरमियान मौजू बहस रहा है कि भाई सबसे बड़ी नेमत कौन सी, ईमान, जिंदगी क्या है। तो बाद लोग यही कहते हैं कि ये जिंदगी ये गया, असल वैसे तो ईमान सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह की इस नेमत का हुसूल और मिलना भी जो है वो इसी जिंदगी के ऊपर मौकूफ है। इस माना करके अगर कोई दावा करे कि सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है वो जिंदगी की शक्ल में है, तो उसका ये दावा कोई बेजा दावा नहीं है जिसको रद्द करने की जरूरत हो। बहरहाल अल्लाह तआला ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई है, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا, زندگی کو بھی پیدا فرمایا, اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے. ہماری ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں حسن عمل مطلوب ہے. تو بہرحال یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی. اب اس زندگی کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے, اسی چیز کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ, حضرت آدم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاری فرمایا. اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین پر اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے اس سلسلے کو مکمل فرمایا, اور آپ نے آ کر کے اپنے قول اور عمل سے زندگی گزارنے کا ایک شاندار طریقہ پوری انسانیت کو بتلایا, ایسا جس کے متعلق خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. گویا ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے, ہم کیسی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو, وہ سارا نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے پوری انسانیت کو عطا فرمایا. زندگی کے ہر شعبے میں شریعت مطہرہ نے جو احکامات انسانوں کو دیے ہیں, ان احکامات میں عقائد سے متعلق بھی پوری تفصیلات موجود ہے, اخلاق سے متعلق, عبادات سے متعلق, اور معاملات سے متعلق, معاشرت سے متعلق, ایک ایک چیز, یہاں تک کہ لباس کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے بتلائی. شمائل میں روایت موجود ہے, حضرت عبید بن خالد محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا راستے سے, پیچھے سے ایک آواز سنی, ارفع ازارک فإنه انقى وابقى, یا انقى وابقى, کہ تم اپنی لنگی کو اونچا کر لو, اس میں لنگی کی صفائی بھی ہے, اس لیے کہ اگر لنگی ٹخنوں سے نیچی, اتنی نیچی کہ وہ زمین کے ساتھ دھسٹ رہی ہے, تو میلی ہو جائے, اور پھر اس دھسٹنے کی نتیجے میں وہ جلدی سے پھٹ بھی جائے گی. حضور فرماتے ہیں انقا و ابقا, صفائی بھی ہے اور اس کے اندر تمہاری لنگی کے اندر کو دیر پا رکھے گا اس طریقہ. حضرت یہ عبید بن خالد فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے جنہوں نے مجھے اس جملے سے مخاطب کیا تھا, اب حضور نے ان کو لنگی اونچا رکھنے کی علت کے طور پر, وجہ کے طور پر دو چیزیں بتلائی, انقا و ابقا. اس سے ان صحابی کو یہ گمان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری اس لنگی کی حفاظت کے پیش نظر یہ ہدایت مجھے عطا فرما رہی. نہ حضرات صحابہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے, وہاں کوئی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں حضور کا حکم ملنے کے بعد. لیکن یہ آخری جملہ جو آپ نے گویا اس کی علت کے طور پر فرمایا تھا, اس سے ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس لنگی کی حفاظت اور بقا کی غرض سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ये तो मामूली सी चदरिया है, क्या ना अगर वो मैली भी हो जाए फट भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये जवाब इसीलिए दिया, और कोई मकसद नहीं था। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलट कर जवाब में इरशाद फरमाया, अमा लक फिया उस्वतुन, क्या तुम्हारे लिए मेरी जात के अंदर नमूना मौजूद नहीं है। हजरत खालिद उबैद बिन खालिद कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी को देखा कि वो आधी पिंडली तक थी, मैंने अपनी लुंगी फौरन ऊंचा करके उसको आधी पिंडली तक कर दिया। देखो यहां एक लुंगी की वजह कैसी होनी चाहिए, लुंगी किस अंदाज से हमें पहनना चाहिए, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं। और उनके उस बात के जवाब में हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, हमालक फिया उस्वतुन, क्या तुम्हारे लिए मेरी जात के अंदर नमूना मौजूद नहीं है, गोया ये जुमला एक बय्यिन दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर अदा एक मोमिन के लिए नमूना है, उसको चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को उसी के मुताबिक उस्तवार करने का एहतमाम करे। हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का मकाम बहुत ऊंचा है, अकायद इबादात मामलात माशरत हर चीज में वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को अपनाना अपना फरीजा और अपनी सआदत समझते थे। इन सुन्नतों के अंदर जिनको सुना ने जवाइज से हजरात उलमा ने ताबीर किया है, उनमें भी हजरात साहबा हुजूर की पैरवी को अपने लिए लाजिम समझते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अकाबिर साहबा में हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा मक्का वालों के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, अपना नुमाइंदा एसी बना करके भेजा। हालत अहराम में थे, एक चादर लुंगी के तौर पर नीचे पहने हुए थे, एक चादर ओढ़े हुए थे। उनके कबीले को मक्का के अंदर बड़ी रियासत और कुव्वत हासिल थी। बनू मैया उनको पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना एलची बना करके भेजा है। उनके कबीले वालों पर भी खुशी हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कबीले के एक आदमी को ये सआदत अता फरमाई। अगरचे वो मोबाइल का जमाना नहीं था लेकिन वहां बात पहुंच चुकी कि हजरत उस्मान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे और एलची बनकर के आ रहे हैं मक्का मुकर्रमा के सरदारों के पास। उनके कबीले के लोग बाकायदा हजियान सजा कर मुसल्ला होकर उनके इस्तकबाल के लिए मक्का मुकर्रमा से बाहर आए और बड़ा शानदार इस्तकबाल करते हुए उनको इस बात का इत्मीनान दिलाया, क्योंकि यहाँ अंदेशा था कहीं कोई आदमी कोई शरारत करके इनको गजंद न पहुंचाए। उससे पहले एक शख्स को नुमाइंदा बना करके भेजा गया था, तो कबीले खुदा एक आदमी थे उनके मुक्तक को उन लोगों ने कत्ल कर दिया था और उनकी भी जान के लाले पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो वापस लौटे थे। इसलिए इनके कबीले वालों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हम आपको अपने साथ लेकर के चलते हैं, आप बेखौफ व खतर इत्मीनान और सुकून के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम मक्का मुकर्रमा के सरदारों तक पहुंचाई। चुनांचे वो अपने साथ लेकर के चले मक्का मुकर्रमा में आने के लिए। इनकी नजर पड़ी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की लुंगी के ऊपर, वो आधी पिंडली तक थी। उस जमाने में मक्का वालों का और मक्का के जो सरदार किस्म के लोग थे उनका एक फैशन था, स्टेटस वो ये था, कि वो अपनी लुंगी इतनी नीची रखते थे कि वो जमीन के साथ घिसकने लगे। उसी को वो अपनी इज्जत अपना वकार समझते थे। और किसी आदमी की लुंगी अगर ऊंची हो तो ऐसे आदमी को मामूली और हल्का समझा जाता था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के कबीले वालों ने देखा कि इनकी लुंगी तो आधी पेड़ी तक थोड़ी ऊंची मेरे बहुत ज्यादा ऊंची है एकदम। तो कबीले वालों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को मुतवज्जे किया, उस्मान तुम मक्का के बड़े बड़े सरदारों के पास पैगाम लेकर के एलची बन करके मैसेंजर बन करके जा रहे हो और उन लोगों की निगाह में इस तरह जो आपने लुंगी पहन रखी है ऐसा आदमी बहुत घटिया खसीस और मामूली समझा जाता है। उनका फैशन ये है, तरीकेकार ये है, उनके नजदीक वो आदमी अच्छा समझा जाता है जिसकी लुंगी इतनी नीची हो कि जमीन के साथ मिश्र है। जब कबीले वालों ने ये जुमला कहा तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने बड़ी होया इसके साथ हिम्मत के साथ और बड़ी बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हा कदा इज़रतु हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुंगी बांधने का अंदाज उसका तरीका स्टाइल यही है और मैं इससे हटकर अपनी लुंगी बांध सकता नहीं। लोग समझें मुझे मालूम है वकार होता उनकी, पर वो ना समझें मेरी बज़्म के काबिल न रहा। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला ने अजमईन तो वहीं से इज्जत हासिल करते थे, ये देखते थे कि वहाँ कौन सी अदा पसंद की जाती है। हम लोग दुनिया वालों से इज्जत हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन भाइयों कभी भी इसमें कामयाबी होने वाली नहीं है। उस एक को राजी कर लो सब राजी हो जाएंगे, अगर उसको नाराज कर लिया तो सारी दुनिया में सबको राजी करते रहोगे कोई काम बनने वाला नहीं। बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता था कि हुजूर की जाते बाबरकात को अल्लाह ताला ने जो नमूना बना करके भेजा वो हर चीज में, इसलिए हमें अपनी जिंदगियों को उसी के मुताबिक गुजारना है। कैसे गुजारी जिंदगी आई, वन शबाबी ही सीमा अफना, जवानी के मुताबिक पूछा जाएगा सीमा अगला, जवानी को कहाँ आपने इस्तेमाल किया, कहाँ खर्च किया, पुराना किया। जवानी अगर चे जिंदगी ही का एक हिस्सा है और पहले सवाल में जिंदगी के मुताबिक बतला दिया गया, चाहिए तो ये था कि जवानी भी उसमें आ गई, लेकिन चूंकि जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको जिंदगी के बकिया हिस्सों के ऊपर फौकियत हासिल है, एक शानदार चीज है, इसलिए उसको अलग से अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा। मेरे नौजवान दोस्तों से अर्ज करूंगा अल्लाह ताला ने जवानी की शक्ल में जो नेमत तुमको अता फरमाई है वह ऐसी अजीब गरीब नेमत है कि और कोई चीज का मुकाबला नहीं कर सकती। जवान जो काम अपने अज़्म और इरादे से करना चाहे आसानी से कर सकते हैं। आज हमारे जवानों के अंदर वो बात वो हौसले रहे नहीं, खत्म होते जा रहे। हमारी जवानों की नौजवानियां जो है उनका शबाब शहवत परस्ती की नजर हो गया, मोबाइल के अंदर उन्होंने अपने आप को खपा दिया और खत्म कर दिया। जरूरत है कि अपनी जवानी को काम में लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा कौन थे, माज़ इब्ने जबल कौन थे, और वो अबू उबैदा इब्ने जर्राह कौन थे, हजरत ज़ैद इब्ने साबित कौन थे, और इसी तरह दूसरे सहाबा इकराम सब जवान, हजरत मुआज़ जिनका इतना ऊंचा मकाम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबा में हलाल व हराम के सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज़ इब्ने जबल ईमान लाए तो उस वक्त उनकी उम्र 12-13 साल और सन 18 हिजरी के अंदर उनका इंतकाल हुआ तो 33 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, 33 साल की उम्र में। लेकिन अल्लाह ने ऐसा ऊंचा मकाम अता फरमाया था, वो तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चार हजरत सहाबा से कुरान सीखने की लोगों को तलकीन फरमाई उनमें हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी है। हजरत अलकमा जो इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खास शागिर्द हैं, एक मरतबा फरमाते हैं कि मैंने उनके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी, इन इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा। तो कहा, ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाने लगे, इन मुआज़न काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। पूछा लोगों ने, उम्मत किसको कहते हैं? कहा, लोगों को जो भलाई और खूबियों की बातें सिखलाए उसको उम्मत कहते हैं, और कानित जो अल्लाह के अहकाम का मुती और फरमाबरदार हो। तो बहरहाल ये जितने भी सहाबा हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए वो सब जवान थे। हमारे जवानों को चाहिए कि अपनी जवानी को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें। इस जवानी के मुतालिक कयामत के रोज सवाल होगा। और आगे तीसरा और चौथा सवाल माल के मुतालिक है। वन माली बिना इलाही तसवहु फीमा अनफकहु, कहाँ से कमाया? कमाने का जो तरीका है, अगर शरीयत ने कमाने के मुतालिक एक बात उसूली तौर पर फरमा दी, कस्बुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा। इस्लाम के जो बुनियादी फराइज हैं, फराइज खमसा, उनके बाद ये हलाल कमाई हासिल करना ये भी फर्ज है, लेकिन उसका दर्जा बात का है। आप इसके साथ चाहे हलाल तरीके से कमाएं, लेकिन उसके लिए आप नमाज को कुर्बान नहीं कर सकते, रोजे को कुर्बान नहीं कर सकते। और इंसान के इन बुनियादी फराइज के मुकाबले में इस हलाल कमाए वाले तरीके को ही तरीके को यूं कहे कि भाई हलाल कमाने को भी एक फर्ज करार दिया गया है, और मौलवी साहब उसमें मुझे जमात के साथ नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता या मेरी नमाज कजा हो जाती है, तो आपको यही जवाब दिया जाएगा कि नहीं, ऐसी कमाई की शरीयत जो इजाजत नहीं देती है, उसका दर्जा बाद का है। तो हलाल शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक हलाल कमाना है। आज हमारे माशरे में हराम कितना शाये और आम हो गया, लोगों का मिजाज क्या बन गया, बस पैसा चाहिए। बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिंगोई फरमाई है, आदमी जब पैसा हासिल करेगा तो ये परवाह नहीं करेगा कि कहाँ से हासिल किया है, हलाल से या हराम, बस पैसा लाओ कहीं से लिया है, नहीं ये मतलूब नहीं है। ये हराम तो आपको जहन्नम में ले जाए। आज हमारे इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के अंदर ये बुराइयां जो अंदर घुस चुकी हैं, डेरा डाल चुकी हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात में से बड़ी वजह कमाई का हलाल न होना, इसलिए उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए। फिर यह है कि हलाल तरीके से कमाया तो वो भी अल्लाह की नेमत है, खर्च करने में भी हम आजाद नहीं, खर्चा भी उसी के मुताबिक करना है तो अल्लाह का हुक्म है। बाद लोगों को गलत फहमी हो जाए, कमाते हैं जब खर्च करने का मौका आता है तो अपनी मर्जी से बेदरेक खर्च करते हैं, हालांकि जहाँ जिस अंदाज से खर्च किया जा रहा है शरीयत ने उसकी इजाजत नहीं दी। उनको जब मुतनब्बे किया जाता है कि मौलवी साहब हमने हलाल तरीके से कमाया है, ठीक है हलाल तरीके से कमाया है, लेकिन खर्च करने के मामले में आप आजाद नहीं, शरीयत तो फजूल खर्ची से हर चीज में मना करती है। वुजू जैसी इबादत जो नमाज का एक जरिया है, एक सहाबी वुजू कर रहे हैं, पानी कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया, हालांकि वैसे ही वहां तो पानी की कमी थी, इस्तेमाल करने वाले बहुत बच बच करके इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ जरा उसमें ज्यादती की होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खिताब करते हुए फरमाया, मा हज़ा सरफ़ या साल, ए साल ये पानी में फिजूल खर्ची कैसी? तो चूंकि वो वजू कर रहे थे, उन्होंने उलट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह حافظ وضو سلفن، کہ اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی فضل خرچ، اگر وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ استعمال ہو جائے تو وہ اسراف ہے، منع ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ولو کنت علی نہر جاری، جی ہاں تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو وہ کیا ہے؟ اسراف۔ ہمارے یہاں شادیوں میں اور دوسرے موقعوں پر بے دہیج جو پیسے خرچ، جو اللہ نے جن کو دولت دی ہے، ایک طرف امت کا یہ حال ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے افراد کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بے دہیج خرچ کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ یہ بھی سوال ہوگا، آخری سوال، مجھے اس وقت اسی سوال کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماذا عمل فیما علم، کل کو قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دیے بغیر آدمی ہٹ نہیں سکتا کہ جو علم حاصل کیا، جو علم آپ کو ملا، اس پر آپ نے کیا عمل کیا۔ یہ ہر ایک سے سوال ہوگا، ایک عامی آدمی وہ بھی جتنا شریعت کے متعلق جانتا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ جتنا آپ کے علم میں تھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا، ایک عالم اس کو جتنا علم تھا اس کے متعلق سوال ہوگا کہ اس علم پر آپ نے کیا عمل کیا۔ آج ہمارے عزیز یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر کے جا رہے ہیں تو ان سے عرض ہے کہ بھئی یہ علم بمانا دانستن جاننا یہ اصل کمال نہیں ہے۔ آج ہم میں جو سب سے بڑا جو ہے نا سب سے بڑی تبدیلی جو آئی اور ہمارے سوچ میں ہمارے نظریات کے اندر جو سب سے بڑی خرابی آئی وہ کیا ہے، ہم نے علم ہی کو فخر اور مباحت کا ذریعہ بنا لیا اور اسی پر گویا ہم راضی ہو کر کے بیٹھ گئے، عمل کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا علم ہے، جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کوتاہی ہے عملی اعتبار سے، اس کو جاننے کے باوجود اسی پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا علم ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ بھئی تمہارا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اللہ ناراض ہے اس پر۔ ہم یہ جاننے کے باوجود اپنے اس عمل کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، علم کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے یہی ہماری بڑائی کی علامت ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں علم کے روشنی میں معلوم ہیں پھر بھی اس علم کے مطابق عمل کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اپنی ان غلطیوں کے اوپر، اپنی ان برائیوں کے اوپر اسی طرح اڑے ہوئے ہیں جیسے علم حاصل کرنے سے پہلے ہمارا حال تھا۔ پھر اس علم نے آ کر ہم کو کیا فائدہ پہنچایا؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع لینے والا علم مانگتا ہوں۔ معلوم ہے علم کی ایک قسم وہ ہے جو فائدہ دیتی، دوسری دعا ہے واعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے۔ معلوم ہے دوسری قسم علم کی علم غیر نافع، تو کون سا علم مطلوب ہے؟ علم نافع مطلوب ہے، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی گئی ہے وہ مطلوب نہیں ہے، وہ تو وبال ہے آدمی کے لیے، کل کو قیامت میں وہ اس کو لوگوں کے دوسرے ناواقف لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سزا جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ تو علم نافع اور غیر نافع میں کیسے پتہ چلے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طالب علم مدت تک رہا، جب جانے لگا تو اس نے کہا آپ کی صحبت میں بہت کچھ سیکھا، بہت ساری باتیں ہیں، اب میں عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا اجمالی طور پر مختصر انداز میں کوئی نصیحت مجھے فرما دیں تو اسی کو میں جو ہے نا को अपनी जिंदगी में अपना लें। उन्होंने एक नसीहत नामा लिख करके उनको दिया, उसका नाम ही अय्युहल वलद। इमाम बुखारी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल में एक रिसाला इस नाम का भी है। और हमारे अकाबिर में से हजरत मौलाना आशिक इलाही साहब बेटी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में उसका तर्जमा किया है, उसका नाम है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का खत। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी अलामत बताई नाफे और गैर नाफे की। वो फरमाते हैं, बेटा जो भी मैं तुमको दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बचा सकता, वो कयामत के रोज अल्लाह के अजाब से भी नहीं बचाएगा। आपको चाहिए कि आप अपने इल्म की रोशनी में अपनी जिंदगी को ऐसा उस्तवार फरमाएं कि किसी भी चीज में अल्लाह की मासियत और नाफरमानी की नौबत ना आवे। जानने के बावजूद अगर आप इन चीजों का इंतजाम करेंगे तो आपका ये इल्म कल को अल्लाह के अजाब से आपको बचा नहीं सकता। इसमें जरूरत है कि आप हजरात इस इल्म पर अमल का एहतमाम करें। इल्म आपसे अमल चाहता है। कल की मजलिस में मैंने हजरत डॉक्टर अब्दुल्हय साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाह वकदौ के अजल खलफा में से थे, उनका जुमला नकल किया था। वो फरमाते थे कि इल्म की सूरत किताबों से आती और इल्म की हकीकत अमल से आती है, और इल्म की लज्जत अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत से आती है, बुजुर्गाने दीन की सोहबत से आती है। बहरहाल खाली किताबों में इल्म पढ़ लेने से काम नहीं चलता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया था। मदरसा निजामिया जो जमाने का सबसे बड़ा मदरसा और सबसे बड़ी दरसगाह थी, उसके मनसबे सदारत पर फाइज थे। बड़े बड़े उलमा आपकी खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए आते थे। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया तो मैंने देखा कि मेरी ज्यादातर तवज्जो उन उलूम की तरफ है जो ज्यादा आखिरत के एतबार से ज्यादा नाफे नहीं, और मैंने अपनी नीयत को टटोला तो देखा कि उसमें हुब्बे जाह काम कर रही। काम उन्होंने इस मनसब को छोड़ा, सहरा नवर्दी इख्तियार की और 11 साल तक जो है अपनी इस्लाह के लिए इस तरह सहरा नवर्दी में मशगूल रहकर बाद में जब अपना तस्किया कर लिया, उसके बाद आप फिर मसनद तदरीस के ऊपर जब बैठे हैं, अल्लाह ने आपके जरिए से वह फैज पहुंचाया कि आज तक वो सिलसिला जारी है। अलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत ऊंचा मकाम था इल्मी एतबार से। आपकी जब सवारी निकलती थी ना, तो आपकी सवारी में जहाँ तलबा और उलमा की जमातें होती थी, उमराए सल्तनत, क्योंकि ये भी शाही खानदान के आदमी थे, उमराए सल्तनत की भी एक जमात उनके साथ हुआ करती, इस शान से उनकी सवारी निकलती थी। लेकिन उनको भी दिल ने वही टोका, ये सब क्या है। चुनांचे उन्होंने हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की। मौलवी नशुद मौलाए रूम का गुलाम शम्स तबरेजी नशुद के मौलाए रूम मौलवी नहीं बना जब तक के मौलाए रूम गैर मौलवी नहीं बना जब तक के उन्होंने शम्स तबरेजी की सोहबत हासिल नहीं की। जब वो सोहबत हासिल की, अल्लाह ने वो फयूज अता फरमाए, आज तक गया उसका सिलसिला मुसलसल जारी है। तो बहरहाल हमारे अकाबिर हजरत नानोत्वी, हजरत गंगोई रहमहुमुल्लाह और दीगर अकाबिर हजरत हकीमुल उम्मत, उनके उलूम जब उनकी किताबों को हम देखते हैं तो अंदाजा होता है कैसे उलूम थे। आज तो उनकी बात तहरीरात का पढ़ना भी बहुत से आलिमों के लिए मुश्किल हो जाता है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की इमदादुल फतावा उठा करके देख लो ना, जवाब ऐसे अंदाज से हैं कि बात तो उसको भी समझ नहीं सकती। और हजरत नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरात का तो कहना ही क्या। लेकिन इन हजरात ने अपने इल्म की हकीकत को हासिल करने के लिए हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब दहली रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की, जो रस्मी एतबार से आलिम नहीं थे, काफिया तक पड़े हुए थे। बस। लेकिन जो है इन हजरात ने इनकी सोहबत इख्तियार करने में कोई आर महसूस नहीं किया। आजकल हमारे उलमा का तो हाल ये है कि जो अहले इल्म और असाबे निस्बत हैं उनके पास जाने से भी आर महसूस करते हैं। क्या जाएंगे जो अहले इल्म नहीं है, अभी कहना रस्मी आलिम नहीं है, वहां तो उनके लिए जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन हमारे इन अकाबिर ने जिनकी तरफ निस्बत करने को हम अपनी सआदत और अपने लिए फख्र समझते हैं, उन्होंने गैर आलिम के साथ ताल्लुक कायम करने में कोई आर महसूस नहीं किया, बल्कि उन्हीं से हासिल किया। हजरत नानोजी से किसी ने पूछा कि आपने हजरत हाजी साहब आलिम थे, जवाब क्या देते हैं, आलिम गर्व थे, यानी आलिम बनाने वाले थे। किसी ने पूछा हजरत गंगोई से कि आपने उनकी सोहबत क्या किया, क्यों किया नहीं, क्या भाई देखो एक आदमी पढ़े और मिठाइयों के नाम ये मिठाई ये फलानी मिठाई, उसके अंदर उसका जायका यूं होता है, उसका फायदा यूं होता है, सब पढ़ लिया। पर एक दूसरा आदमी है हलवाई की दुकान पर आपको ले जाए, ये मिठाई आपके मुंह में रखी, इसका ये देखो जायका देखो, इसका ये फायदा है, दूसरी मिठाई रखी। तो कहा हाजी साहब का मामला ऐसा ही है, हमने किताबों में उलूम तो पढ़े थे लेकिन इसका ये फायदा ये फायदा हाजी साहब ने हमको अमली तौर पर बदला दिया। जरूरत इसी की है। आज हमारे तबके उलमा में तो सबसे बड़ी कमी है वो यही है। और आज मैंने जैसा कि अर्ज किया था ये भी सब जहन में रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तलबा का एक अपना खास माहौल मिजाज हुआ करता है। तलब इल्मी से पहले तो यही कहा जाता था कि तलब इल्मी से फारिग होने के बाद फौरन ये सिलसिला शुरू हो सोहबत का, लेकिन मेरे नजदीक आजकल के हालात के पेश नजर जब फौरन जाएंगे तो तलबा तालिबाना जो मिजाज है वो इस्तेफादे की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। इसलिए पहले कुछ दिनों जो है ना दरअसल तदरीस का सिलसिला तालिब इल्मी के जमाने में कोई जिम्मेदारी होती नहीं, सब कुछ बैठे बिठाया होता है। ये तो चार पांच साल जब कहीं किसी मदरसे में मकतब में पढ़ाएंगे और लोगों से वास्ता पड़ेगा और उस वक्त आपकी अना मजरू होगी, उसके बाद जब आप किसी बुजुर्ग की खिदमत में जाएंगे ना तो जरा कदर होगी। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये चीज बहुत जरूरी है, इसकी तरफ हमारे तबके उलमा को खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक हो शहादत अता फरमाए। अब तो ये खानकाहों का सिलसिला भी जो है ना पहले कदीम जमाने में जैसे थी, बहरहाल वह फिर भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन, और अल्लाह ताला किसी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं देते जिस पर अमल मुमकिन न हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सादिक़ीन का वजूद हर ज़माने में दुनिया के अंदर रहेगा। बहरहाल तलाश करने की ज़रूरत है और अकीदत और मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत में हाजिर होने की ज़रूरत है। जब तक बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो लेकिन आपके दिल में उसके मुतालिक अकीदत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनाफिकीन भी आते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया शान इफाज़ा फैज पहुँचाने वाली सलाहियत में कोई कलाम ही नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ जो फैज हासिल करने वाले थे उनके अंदर सलाहियत नहीं थी। उनको जिस गोया अकीदत से आरास्ता होना चाहिए था वो नहीं थी। कुरान ने इसीलिए अल्लाह ताला ने खुले लफ्जों में कह दिया इला जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। तो हकीकत तो यह है जब तक के अकीदत और मोहब्बत नहीं होगी वहां तक इससे फायदा होने वाला हर जमाने में अहलुल्लाह और बुजुर्गों की सोहबत में जो लोग जाते रहे वहां भी यही दो किस्में होती रही। जो अकीदत और मोहब्बत से हाजिरी देते थे वो तो फैजियाब होकर के आते थे, जो एतराज के साथ हाजिरी देते थे वो महरूम आते थे। हजरत शाह वसीउल्लाह साहब के इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत हकीम उम्मत के अजल खुलफा में से हैं, जो है उनके रसायल छपे हुए हैं। एक रिसाला है एतकाद और इनकार, उसमें इसी मौजू पर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बुजुर्गों की खिदमत में जाते हैं हमको फायदा नहीं होता। हजरत ने उसका बहुत तफसीली जवाब दिया है, फायदा क्यों नहीं होता, फायदा हासिल करने के लिए जिस एतकाद और अकीदत के साथ जाना चाहिए वो है नहीं, फायदा कैसे होगा। इसलिए वरना तो अल्लाह देने वाली जात तो अल्लाह की है, अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, देने वाला अल्लाह है, लेकिन दुनिया का निजाम अल्लाह ने ऐसा कायम किया है कि हर चीज का एक सबब है, उस सबब को आप अपनाओगे उनकी शराइत के साथ ये चीज हासिल होगी। दूध आपको चाहिए तो दूध आप रात भर दुआ करते रहे आसमान से नहीं बरसेगा, दूध के लिए आपको भैंस का बकरी का गाय का सहारा लेना पड़ेगा। कोई आदमी कहेगा ये काली काली भैंस, मैं तो इससे दूध नहीं लेता, मैं तो शेरनी से दूध हासिल करूंगा, कहेगा मिलता हो तो ले लो, शेरनी देती होगी, शेरनी अपनी जगह पर कैसी बहादुर सही जैसी भी हो, लेकिन वो भैंस दूध तो आपको भैंस और गाय से ही मिलेगा, शेरनी से मिलने वाला नहीं है। हकीकत तो ये है हर चीज का, आप आम का फल लेना चाहते हैं तो आपको किससे ताल्लुक कायम करना पड़ेगा, आम के दरख्त से, वहीं से आम का फल मिलेगा। चीकू चाहिए तो चीकू के दरख्त से मिलेगा, आपको अंगूर चाहिए तो अंगूर की बेल पर से आपको अंगूर मिलेंगे, ये दारुल असबाब है। इसी तरह आपको अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है तो अहलुल्लाह की सोहबत से, लेकिन उस अहलुल्लाह की सोहबत के लिए शराइत, उनमें बड़ी शर्त यह है कि जब आप उनके पास जावें उनके मुतालिक आपके दिल के अंदर कोई एतराज न हो। आजकल आम मिजाज बचपन से हम अखबारात पढ़ते हैं, और आजकल तो ये सोशल मीडिया है, उसने तो हमारे कुलूब का और जहनों का कबाड़ा कर दिया, कोई दुनिया में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं, समझा, कोई ऐसी शख्सियत है जिसके मुतालिक कोई कलाम न किया गया हो इन चीजों के अंदर। आज क्या है, एक आदमी बेचारा अपनी सादत समझकर किसी नेक बंदे की खिदमत में जाता है, उसके चार दोस्त हैं, चारों के चारों उसको टॉर्चर करते रहते हैं, अरे तू इसके पास जाता है, ये तो ऐसा है, तो कहता है ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, उसने उतने पैसे कहां पैसे खाए, उससे पूछेंगे पैसे कहाँ के खाए थे जरा बताओ, तो लेकिन ये कहेंगे जरूर उसने ऐसा किया था, उसकी बुराई बुरा, उसका नतीजा ये होता है कि उसके जहन में अपने शेर के मुतालिक जो अकीदत थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और यही बुनियाद थी फैज के हासिल होने की, फैज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। आज दुनिया जो है हम तो डूबे हैं, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुद भी इन बुराइयों में मुबतला है और दूसरों को भी इसमें डालना चाहती है, इसलिए बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। बहरहाल हमें चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला की तरफ से फैज के ये चश्मे जहाँ अपने अपनी जगहों पर जारी हों, उसका जो तरीक़ा है उस तरीके के मुताबिक उससे हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक व सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
दुआ कर लीजिए, वक्त अभी ज्यादा हो गया है, मुख्तसर दुआ पर है इत्तेफाक करते हैं। वैसे भी रात को वहाँ बुखारी के खत्म में दुआ हो ही चुकी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے جلد فرما تیری مرضیات پر तू हमको ज्यादा से ज्यादा चला कर तेरी नामर्जिया से हमारी पूरी पूरी इबादत फरमा। है अल्लाह तेरी निस्बत से जो बातें कही सुनी अल्लाह उन पर अमल की तौफीक अता फरमा, उनके जो हकीकी फायदे हैं समरात हैं अनवार हैं और अल्लाह उनसे हमको मुस्तफीद फरमा। अल्लाह हम सबको हमारे गुनाहों की वजह से बदामालियों की वजह से महरूम न फरमा। अल्लाह तेरे ये बंदे यहाँ से इल्म हासिल करके जा रहे हैं उनको तो अपने दीन और इल्म दीन और इमाम इस्लाम की खिदमत के लिए बेइंतहा कबूल फरमा। इस जामिया को भी हर नौ की तरक्यात से मालामाल फरमा, उसके इल्मी अखलाकी इंतज़ामी तालीमी तरबियती मैार को बदल से बदलतर फरमा। अल्लाह इस जलसे में हाजिरी देने वाले को तो अपने तमाम बंदों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुई अब भी महरूम न फरमा। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتوب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔